पहला अंक। राजा, हाय हाय, वैद्यों ने जवाब दिया, हकीमों ने जवाब दिया, डाकदरों ने जवाब दिया, किसी ने रोग को ना पहचाना, सबके सब लुटेरे थे, अब जिंदगानी की कोई आशा नहीं, यह सारा राजपाट छूटता है, मेरे पीछे प्रजा पर न जाने क्या बीतेगी, राजकुमार अल्हड़ नादान है, उसकी संगत अच्छी नहीं है। रविशंकर की ओर कटाक्ष से देखकर, किसानों से मेल रखता है, उनके पीछे सरकारी आदमियों से रार करता है, जिन दिन दुखी रोगियों के परछाई से भी डाकदर लोग डरते हैं, उनकी दवा दारू करता है, उसे अपनी जान का धन का तनिक भी लोभ नहीं है, वह इतना बड़ा राज कैसे संभालेगा, अत्याचारियों को कैसे दंड देगा। हाय मेरी प्यारी रानी, जिससे मैंने अभी महीने भर हुए ब्याह किया है, मेरे बिना कैसे जिएगी, कौन उससे प्रेम करेगा। हाय रानी, स्वामी जी, मैं इस सोग में मर जाऊंगी, ये उजले सनके से बाल, यह पोपला मुँह कहाँ देखूंगी, किसको गोद मिलूंगी, किससे ठुनकूंगी, अब मैं किसी तरह न बचूंगी। राजा की सांस उखड़ जाती है, आंखें पथरा जाती हैं, नाड़ी छूट जाती है, रानी छाती पीट कर रोने लगती है, दरबार में हाहाकार मच जाता है। राजा के कानों में आकाशवाणी होती है, हम तुझे 1 घंटे की मोहलत देते हैं, अगर तुझे 3 मनुष्य ऐसे मिल जाए जो दिल से तेरे जीने की इच्छा रखते हो तो तू अमर हो जाएगा। राजा सचेत हो उठ जाता है, उसके मुखारबिंद पर जीवन ज्योति झलकने लगती है, वह प्रसन्न मुख उठ बैठता है और आप ही आप कहता है, अब मैं अमर हो गया, अकंटक राज्य करूंगा, शत्रुओं का नाश कर दूंगा, मेरे राज्य में ऐसा कौन प्राणी है जो हृदय से मेरे जीने की इच्छा न रखता हो। 3 नहीं 3 लाख आदमी बात ही बात में निकल आएंगे। दूसरा अंक। राजा एक साधारण नागरिक के रूप में आप ही आप, समय कम है, ऐसे 3 सज्जनों के पास चलना चाहिए जो मेरे भक्त थे। पहले सेठ के पास सुनो, वह परोपकार के प्रत्येक काम में मेरी सहायता करता था, मैंने उसकी कितनी बार रक्षा की है और उसे कितना लाभ पहुंचाया है। यह सेठ जी का घर आ गया। सेठ जी, सेठ जी, जरा बाहर आओ। सेठ, क्या है, इतनी रात गए, कौन काम है। राजा, कुछ नहीं, अपने स्वर्गवासी राजा का यश गाकर उनकी आत्मा को शांति देना चाहता हूँ। जैसे धर्मात्मा प्रजाप्रिय पुरुष थे, उनका परलोक हो जाने से सारे देश में अंधकार छा सा गया है, प्रजा उनको कभी न भूलेगी, आपसे तो उनकी बड़ी मैत्री थी, आपको तो और भी दुख हो रहा होगा। सेठ, मुझे उनके राज्य से कौन सा सुख था कि अब दुख होगा, मर गए अच्छा हुआ, उनकी बदौलत लाखों रुपए साधु संतों को खिलाने पड़ते थे। राजा मन में, हाय, इस पर सेठ पर मुझे कितना भरोसा था, यह मेरे इशारे पर लाखों रुपए दान कर दिया करता था, सच कहा है, बनिए किसी के मित्र नहीं होते, मैं जन्म भर इसके साथ रहा पर इसे पहचान न सका, अब चलो मंत्री के पास, वह बड़ा स्वाभाविक सज्जन पुरुष है, उसके साथ मैंने बड़े बड़े सलूक किए हैं, यह उसका भवन आगे, शायद अभी दरबार से आ रहा है। मंत्री जी, कहिए, क्या राज दरबार से आ रहे हैं, इस समय तो दरबार में शोक मनाया जा रहा हो, ऐसे धर्मात्मा राजा की मृत्यु पर जितना शोक किया जाए वह थोड़ा है, अब फिर ऐसा राजा न होगा, आपको तो अच्छी बहुत ही दुख हो रहा होगा। मंत्री, मुझे उनसे कौन सा सुख मिलता था कि अब दुख होगा, मर गए अच्छा हुआ, उनके मारे सांस लेने की भी छुट्टी न मिलती थी, प्रजा के पीछे आप मरते थे, मुझे भी मारते थे, रात दिन कमर कसे हुए खड़ा रहना पड़ता था। राजा आप ही आप, हाय, इस परम हितैषी सेवक ने भी धोखा दिया, मेरी आँख बंद होते ही सारा संसार मेरा बैरी हो गया, ऐसे ऐसे आदमी धोखा दे रहे हैं जो मेरे पसीने की जगह लोहू बहाने को तैयार रहते थे। 3 आदमी में ऐसे रहे जिन्हें मेरा जीना पसंद हो, जब दोनों निकल गए तो दूसरे से क्या आशा देखूं, अब रानी के पास जाता हूँ, वह साध्वी सती स्त्री, उसकी जितनी भी सखियाँ हैं सभी मुझ पर प्राण देती थी, वहाँ मेरी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी, अब केवल थोड़ा सा समय और रह गया है, ये राजभवन आ गया, रानी अकेली मन मारे शोक में बैठी हुई है। महारानी जी, अब धीरज से काम लीजिए, आपके स्वामी ऐसे प्रतापी थे कि संसार में सदा उनका लोग यश गाया करते हैं, देह त्याग करके वह अमर हो गए। रानी, अमर नहीं पत्थर हो गए, उनसे संसार को चाहे जो सुख मिला हो, मुझे तो कोई सुख न मिला, उनके साथ बैठते लज्जा आती थी, मैं उनका क्या यश गाऊं, मैं तो उसी दिन विधवा हो गई जिस दिन उनसे विवाह हुआ, वह जीते थे तब भी राण थी, अब मर गए तब भी राण, देखो तो कुंवर साहब कैसे सजीले बांके जवान हैं, मेरे योग्य यह थे न कि वैसा खुसट बुढ़ा जिसके मुंह में दांत तक नहीं थे। यह सुनते ही राजा एक लंबी सांस लेता है और मूर्छित होकर गिर पड़ता है। अभिनव समाप्त होता है। प्रेमशंकर को इन गंवारों के अभिनय कौशल पर विस्मय हुआ, बनावट का कहीं नाम न था, प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अपना भाव स्वाभाविक रीति से पूरा किया, यद्यपि न पर्दे न कपड़े थे न कोई दूसरा सामान, तथापि अभिनय रोचक और मनोरंजक था। सवेरे प्रेमशंकर टहलते हुए पड़ाव की ओर चले तो देखा कि लश्कर पूंछ की तैयारी कर रहा है, खेमे उखड़ रहे हैं, गाड़ियों पर असबाब लद रहा है। साहब बहादुर की मोटर तैयार है और विशेषर शाह तहसीलदार के सामने कागज का एक पुलिंदा लिए खड़े हैं। तेली तमूली भूचड़ आदि भी एक पेड़ के नीचे अभियुक्तों की भांति दाम वसूलने के लिए बैठे हैं। प्रेमशंकर ने तहसीलदार से हाथ मिलाया और बैठकर तमाशा देखने लगे। तहसीलदार, कहाँ हैं गाड़ीवान लोग? बुलाओ, रसद का हिसाब करें। इस पर एक गाड़ीवान ने कहा, हजूर, यहाँ रसद मिला है कि हमारी जान मारी गई है। आटे में इस बेईमान बनिए न जाने क्या मिला दिया कि उसी दिन से पेट में दर्द हो रहा है। घी में तेल मिलाया था, उस पर हिसाब करने को कहता है। अभी साहब से कह दूँ तो बच्चे को लेने के देने पड़ जाएं। अर्दली की कई चपरासी बोले, यह बनिया गोली मार देने के लायक है, ऐसा खराब आटा उम्र भर नहीं खाया। न जाने क्या चीज मिला दी कि हजम ही नहीं होती। घी ऐसा बदबू करता है कि दाल खाते न बनती थी। इस पर तो जुर्माना हो चाहिए, उल्टे हिसाब करने आया है। एक कांस्टेबल महाशय ने कहा, हम इसे खूब जानते हैं, छटा हुआ है। चीनी दी तो उसमें आधी बालू, घी में आधी धुईया, आटे में आधा चोकर, दाल में आधा कूड़ा। इसे तो ऐसी जगह मारे जहाँ पानी न मिले। कई रईस बोले, घोड़े को जो दाना दिया है वो बिल्कुल घुना हुआ, आधा चना आधा चोकर। घोड़ों ने सूंघा तक नहीं। साहब से कहते तो अभी हंटर पड़ने लगे। तहसीलदार, ये सब शिकायतें पहले क्यों नहीं की? कई आदमी, हुजूर, रोज तो हाय हाय कर रहे हैं। तहसीलदार प्रेमशंकर के ऊपर देख कर, मुझसे किसी ने भी नहीं कहा, अब यह सब कुछ नहीं सुनूंगा। जिसके जिम्मे जो कुछ निकले कौड़ी कौड़ी दे दो, शाह जी अपना हिसाब निकालो। विशेषर, मौला बख्श अर्दली, आटा 3 पाव, घी 1/2 kg, चावल 2 पाव, दाल 1 पाव, मसाला 1 पाव, तम्बाकू 1 पाव, कत्था सुपारी 2 छटाक, चीनी 5 छटाक, कुल 3 रुपये। तहसीलदार, कहाँ है मौला बख्श? दाम देकर रसीद लो। एक अर्दली, इस नाम का हमारे यहाँ कोई आदमी नहीं है। विशेषर, है क्यों नहीं? लंबे लंबे हैं, छोटी दाढ़ी है, मुंह पर शीतल का दाग है, सामने के 2-3 दांत टूटे हुए हैं। कई अर्दली, इस हुलिये का यहाँ कोई आदमी नहीं, पहचान हम में से कौन? विशेषर, कहीं चल दिए होंगे और क्या। तहसीलदार, अच्छा दूसरा नाम बोलो। विशेषर, धन्नू अहिर, चावल 3 पाव, आटा 2 पाव, घी 1 पाव, खली 4 पाव, दाना और चोकर 8 पाव, तम्बाकू 1 छटाक, कुल 2 रुपये। तहसीलदार, कहाँ है धन्नू अहिर? निकाल रुपये। एक अर्दली, वह तो पहर रात रहे, साहब का डेरा लाद कर चला गया। तहसीलदार, हिसाब नहीं चुकाया और चल दिया? अच्छा नाजिर जी, उसका नाम लिख लीजिए। कहाँ जाते हैं बच्चों? एक एक पाई वसूल कर लूँगा। प्रेमशंकर, ये लश्कर वालों की बड़ी ज्यादती है। तहसीलदार, कुछ न पूछिए, कम वक्त खा खा कर चल देते हैं, बदनामी बेचारे तहसीलदार की होती है। विशेषर शाह ने फिर ऐसा ही ब्यौरा पढ़ सुनाया, यह जयराम चपरासी का पुर्जा था। जयराम उपस्थित थे, आगे बढ़कर बोले, क्यों रे, घी 1/2 kg लिया कि 1/2 पाव? विशेषर, कागज में 1/2 kg लिखा हुआ है। जयराम, झूठ लिखा है, सुलहो आने झूठ। तहसीलदार, अच्छा 1/2 पाव का दाम दो या कुछ भी देना नहीं चाहते? ये झमेला 9-10 बजे तक रहा। 1/3 से अधिक आदमी बिना हिसाब चुकाए प्रस्थान कर चुके थे। 1/4 से अधिक आदमी लापता हो गए। आधे आदमी मौजूद थे लेकिन उन्हें हिसाब के ठीक होने में संदेह था। ऐसे 10 ही 5 सज्जन निकले जिन्हें खरे दाम चुका दिए। जब सब चीटें समाप्त हो गई तो विशेषर शाह ने उन्हें ला कर तहसीलदार के सामने पटक दिया और बोला, मैं और किसी को नहीं जानता, एक हजूर को जानता हूँ और हजूर के हुक्म से मैंने रसीद दी है। तहसीलदार, मैं क्या अपनी गिरह से दूंगा? विशेषर, हजूर जैसे चाहे दे या दिला दे, 200 में या 70 मिले हैं, मैं टके का इतना आदमी धक्का कैसे उठाऊंगा? महाजन मेरा घर बिकवा लेगा। तहसीलदार, अच्छी बात है, तुम्हारे दाम मिलेंगे। नाजिर जी, आप 2 चपरासियों को लेकर जाइए, इसके वही खाते उठा लाइए और खुद इसकी सालाना आमदनी का हिसाब कीजिए। देखिए अभी कड़ाई खुल जाती है, मैं इसके सब रुपये दूंगा, पर इसी से लेकर बच्चों 2000 रुपये सालाना नफा करते, उस पर एक बार 100 का आटा हुआ तो दम निकल गया। कहाँ तो विशेषर शाह इतने गर्म हो रहे थे, कहाँ या धमकी सुनते भीखी बिल्ली बन गए। बोले, हाँ हुजूर, सब हिसाब किताब जांच लें। इस गांव में ऐसा कौन रोजगार है कि 2000 का नफा हो जाए, खाने भर को मिल जाए यही बहुत है। तहसीलदार, और यह आसपास के देहातों का अनाज किसके घर में भरा जाता है? तुम समझते हो कि हाकिमों को खबर नहीं होती? यहाँ इतना बतला सकते हैं कि आज तुम्हारे घर में क्या पक रहा है। यह रियायत इसी दिन के लिए करते हैं, कुछ तुम्हारी सूरत देखने के लिए नहीं। विशेषर शाह चुपके से सरक गए। तेली तमोली ने भी देखा, यहाँ मिलता जुलता तो कुछ नहीं दिखता, उल्टे पलेथन लगने का भय है, तो उन्होंने भी अपनी अपनी राह ली। तहसीलदार ने प्रेमशंकर की ओर देख कर कहा, देखा आपने, टैक्स के नाम पर इन सबों की जान निकल जाती है। मैं जानता हूँ कि इनकी सालाना आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा 1000 होगी, लेकिन चाहे इस तरह कितना ही नुकसान बर्दाश्त कर लें, अपने बही खाते ना दिखाएंगे, यह उनकी आदत है। प्रेमशंकर, खैर यह तो अपनी चालबाजी की बदौलत नुकसान से बच गया, मगर और बेचारे तो मुफ्त में पिस गए, उस पर जलील हुए और वह अलग। तहसीलदार, जनाब इसकी दवा मेरे पास नहीं है। जब तक कौम को आप लोग एक सिरे से जगा न देंगे, इस तरह के हथकंडों का बंद होना मुश्किल है। जहाँ दिलों में इतनी खुदगर्जी समाई हुई है, जहाँ रियाया इतनी कच्ची है कि वहाँ किसी तरह की इसलाह नहीं हो सकती, हम लोग एक तौर पर आपके मददगार हैं। रियाया को सताकर पीस कर मजबूत बनाते हैं और आप जैसे कौमी हमदर्दों के लिए मैदान साफ करते हैं। प्रभात का समय और कुंवार का महीना। वर्षा समाप्त हो चुकी थी, देहातों में जिधर निकल जाइए सड़े हुए सन की दुर्गंध उड़ती थी। कभी ज्येष्ठ की लज्जित करने वाली धूप होती थी, कभी सावन को शर्माने वाले बादल घिराते थे। मच्छर और मलेरिया का प्रकोप था, नीम की छाल और गिलोयों की बहार थी। चराबर में दूर तक हरी घास लहरा रही थी, अभी किसी को उसे काटने का अवकाश न मिलता था। इसी समय बिंदा महाराज और करतार सिंह लाठी कंधे पर रखे एक वृक्ष के नीचे आकर खड़े हो गए। करतार ने कहा, इस बुढ़े को कूचड़ों सूझती रही है, भला बताओ जो यहाँ मवेशी ने चराने पाए तो कहाँ जाए, और जो लोग सदा से चराते आए हैं वे मानेंगे कैसे। एक बेर कोई इसकी मरम्मत कर देता तो यह आदत छूट जाती। हमका तो ई मौजा माँ 30 बरस हो गई, तब से 10 कारिंदे आए पर चरावर को न रोका। गांव भर के मवेशी मजे से चरते रहे। करतार, उन्हें हुक्म देते क्या लगता है, जाएगी तो हमारे माथे। बिंदा, हमारा जी तो उस ऊब गवाह है कि मन करता है छोड़ छाड़ के घर चल जाएंगे। सुनी थे मालिक अवैया हैं, बस एक बेर उनसे भेंट हो जाए और अपने घर के राह लें। करतार, फैजू दिन भर खाट पर पड़ा रहता है, उससे कुछ नहीं कहते, जब देखो करतार को ही दौड़ाते हैं, मानो करतार उनके बाप का गुलाम है। और देखो पीपल के नीचे जहाँ हम तुम जल चढ़ाते हैं वहाँ नमाज पढ़ते हैं, वहीं दतवन कुल्ली करते हैं, वहीं नहाते हैं। बताओ धर्म नष्ट भया की रहा। आप तो रोज कुरान पढ़ते हैं और मैं रामायण पढ़ने लगता हूँ तो कैसे डांट के कहते हैं, क्या शोर मचा रखा है। अब की अषाढ़ में 300 नजराना मिला, हमें एक पाई से भेंट न हो। बिंदा, हमका तो 1 रुपया मिला रहे। करतार, यह भी कोई मिलने से मिलना है, और सब कहीं चपरासियों को रुपए में 8 आने मिलते हैं, यह कुछ न दे तो 4 आने तो दें। लेना देना तो दूर रहा, उस पर 8 पहर सिर पर सवार। कल तुम कहीं गए थे, मुझसे बोले करतार एक घड़ा पानी तो खींच लो। मैंने तुरंत जवाब दिया, इसके नौकर नहीं हैं, फौजदारी करा लो, लाठी चलवा लो, अगर कदम पीछे हटाएं तो कहो, लेकिन चीलम भरना पानी खींचना हमारा काम नहीं है। उसकी आंखें बहुत लाल पीला की, पीपल के पेड़ के नीचे वाली मूर्तों को देखकर बोले, यह क्या एक पत्थर जमा कर रखे हैं। मैंने तो ठान लिया है कि जहाँ आपकी कोई नजराना लेकर आया और मैंने हाथ पकड़ा कि 4 आने इधर रखी है। जरा भी नरम गरम हुए, मुंह से लाम काफ निकाले और जैसे गर्दन दबाए, फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा। फैजू बोले, तो उनसे भी मैं समझूंगा, खूब पड़े पड़े रोटी गोश्त उड़ा रहे हैं, सब निकाल दूंगा। वह देखो मवेशी इधर आ रहे हैं, बल्लाज तो नहीं है ना। बिंदा, होबे करी तो कौनो डर हो, अब की अस जर आवा है कि ठठरी हो गवा है। करतार, बड़े कसबल का पट्टा है, सुक्खू चौधरी का तालाब जहाँ बन रहा था वहीं एक दिन अखाड़े में उससे मेरी एक पकड़ हो गई थी। मैं उसे पहले ही झपाटे में नीचे लाया, लेकिन एहसास तड़प के नीचे से निकला कि मैं झोंके में आ गया, संभाल ही न सका, बदन नहीं लोहा है। बिंदा, निगाह का बड़ा सच्चा जवान है, क्या मजाल के गऊ की बिटिया मेहरिया की ओर आँखें उठा के ताके। करतार, वह देखो फैजू और गौस खां भी इधर आ रहे हैं, आज कुशल नहीं दिखती। बिंदा, यह गाय भैंसे तो मनोहर की जान परत हैं, बिलासी लेने आवत हैं। करतार ने उच्च स्वर में कहा, यह कौन मवेशी लिए आता है, यहाँ से निकाल ले जाओ, सरकारी हुक्म नहीं है। इतने में बिलासी निकट आ गए और बिंदा महाराज की ओर अनिश्चित भाव से देखकर बोली, सुनते हो महाराज ठाकुर की बात। करतार, सरकारी हुक्म हो गया है कि आप कोई जानवर यहाँ न चरने पाए। बिलासी, कैसा सरकारी हुक्म, सरकार की जमीन नहीं है महाराज, तुम्हें तो यहाँ एक युग बीत गया, कभी किसी ने चराई भी मना किया है। बिंदा, उन पुरानी बातन का न गाओ, अवश्य हुक्म भवा है, जानवरन का और कौनो केत ले जाओ, नहीं तो हम गौस खां आवत हैं, सबन को पकड़ के कहानी हौद पठे दई हैं। बिलासी, कहानी हौद कैसे पठे दई हैं, कौन राजनी है, हमारे मवेशी सदा से यहाँ चरते आए हैं और सदा यहीं चरेंगे। अच्छा सरकारी हुक्म है, आज कह दिया चरावर के छोड़ दो, कल कहेंगे अपना घर छोड़ो, पेड़ तले जाके रहो, ऐसा कोई अंधेर है। इतने में गौस खां और फैजू भी आज पहुँचे। बिलासी के अंतिम शब्द खां साहब के कान में पड़े, टपट कर बोले, अपने जानवरों को फौरन निकाल ले जाओ, वरना मवेशी खाने भेज दूंगा। बिलासी, क्यों निकाल ले जाऊं? शरावर सारे गांव का है, जब सारा गांव छोड़ देगा तो हम भी छोड़ देंगे। गौस खां, जानवरों को ले जाते ही खड़ी खड़ी कानून बघारती है। बिलासी, तुम तो खां साहब ऐसी घुड़की जमा रहे हो जैसे मैं तुम्हारा दिया हुआ खाती हूँ। गौस खां, फैजो यह जमा दराज औरत यूँ न मानेगी, घेर लो इसके जानवरों को, मवेशी खाने हाँक ले जाओ। फैचू तो मवेशियों की तरफ लपका, पर करतार और बिंदा महाराज धर्म संकट में पड़े रहे। खां साहब ने उन्हें भी ललकारा, खड़े मुंह क्या देख रहे हो, घेर लो जानवरों को और हाँक ले जाओ, सरकारी हुक्म है या कोई मजाक है? अब करतार और बिंदा महाराज उठे और जानवरों को चारों ओर से घेरने का आयोजन करने लगे। मवेशियों ने चौकन्नी आंखों से देखा, कान खड़े किए और इधर उधर भिदकने लगे, स्थिति को ताड़ गए। बिलासी ने कहा, मैं कहती हूँ इन्हें मत घेरो, नहीं तो ठीक न होगा। किंतु किसी ने धमकी पर ध्यान न दिया, थोड़ी देर में सब जानवर घिर गए और कंधे से कंधे मिलाए, कनखियों से ताकते तीनों चपरासियों के बीच में धीरे धीरे चले। बिलासी एक संदिग्ध दशा में मूर्तिवत खड़ी थी। जब जानवर कोई 20 कदम निकल गए तब वह उन्नत की भांति दौड़ी और हाँफते हुए बोली, मैं कहती हूँ इन्हें छोड़ दो, नहीं तो ठीक न होगा। फैजो, हट जा रास्ते से, कुछ तो शामत तो नहीं आई है? बिलासी रास्ते में खड़ी हो गई और बोली, ले कैसे जाओगे, दिल लगी है? गौस कहा, न हटे तो इसकी मरम्मत कर दो। बिलासी, कह देती हूँ इन जानवरों को पीछे लोहू की नदी बह जाएगी, माथे गिर जाएंगे। फैजू, हटती यार नहीं चुड़ैल। बिलासी, तू हट जा दाढ़ी जार। इतना उसके मुंह से निकलना था कि फैजू ने आगे बढ़कर बिलासी की गर्दन पकड़ी और उसे इतने जोर से झोंका कि वह एक दो कदम पर जा गिरी। उसकी आंखें तिलमिला गई, मूर्छा सी आ गई। एक क्षण वह वहीं अचेत पड़ी रही, तब उठी और लंगड़ाती हुई उन पुरुषों से अपनी अपमान कथा कहने चले जो उसकी मान और मर्यादा के रक्षक थे। मनोहर बलराज जो एक दूसरे गाँव में धान काटने गए हुए थे, वह यहाँ से कोस भर पड़ता था। लखनपुर में धान के खेत थे, इसलिए सभी लोग प्रायः उसी धान में खेत में गांव में धान बोने जाते थे। बिलासी धान की मेड़ों पर चली जाती थी, कभी पैर इधर फिसलते कभी उधर। वह ऐसी उद्विग्न हो रही थी किसी प्रकार उड़कर वहां पहुंच जाऊं, और घुटनियों में चोट आ गई थी इसलिए विवश थी। उसके रूप रूप में अग्नि की ज्वाला निकल रही थी, अंग अंग से यही ध्वनि निकलती थी, इनकी इतनी मजाल। उसे इस समय परिणाम और फल के लिए मात्र चिंता न थी, कौन मरेगा किसका घर मिट्टी में मिलेगा, यह बातें उसके ध्यान में भी न आती थी। वह संकल्प विकल्प के बंधन से मुक्त हो गई थी। लेकिन जब वह गांव के समीप पहुंची और धान के लहराते खेत दिखाई देने लगे तो पहली बार उसके मन में प्रश्न उठा, इसका फल क्या होगा? बल्लाज एक ही क्रोधी है, मनोहर इससे भी एक अंगुल आगे, मेरा रोना सुनते ही दोनों भभक उठेंगे, जान पर खेल जाएंगे। तब किसी आहत हृदय ने उत्तर दिया, क्या हानि है, लड़कों के लिए आदमी क्यों छींकता है, पति के लिए क्यों रोता है? इसी दिन के लिए तो इस कलमुहे फैजू का मान मर्दन तो हो जाएगा, गौस खां का घमंड तो चूर चूर हो जाएगा। तब भी जब वो अपने खेतों के डाणे पर पहुंचे, मनोहर बलराज नजर आने लगे तब उसके पैर आप ही रुकने लगे। यहाँ तक कि जब वह उनके समीप पहुंची तब परिणाम चिंता ने उसे परास्त कर दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी, जानती थी और समझती थी कि आंसू की बूंदें आग की चिंगारियां हैं, पर आवेश पर इतना काबू न था। वह खेत के किनारे खड़ी हो गई, मुंह ढांप कर रोने लगे। बलराज ने शशंक होकर पूछा, अम्मा क्या बात है, रोती क्यों है, क्या हुआ, सारा कपड़ा कैसे लहूलुहान हो गया? बिलासी ने साड़ी की ओर देखा तो वास्तव में एक रक्त की छींटे दिखाई दिए, घुटनियों से खून बह रहा था, उसका हृदय थरथर कांपने लगा। इन छींटों को छिपाने के लिए वह इस समय अपने प्राण तक दे सकती थी। हाय, मेरे सिर पर कौन सा भूत सवार हो गया कि यहाँ दौड़ी हुई आई, मैं क्या जानती थी कहीं फूट फाट भी जाएगा। अब गजब हो गया, मुझे चाहिए था कि धीरे से धैर्य बैठी रहती। सांझ को जब यह लोग घर आते तो गाँव के सभी आदमी जमा होते तो सारा वृत्तांत कह देती, कैसी सबकी सलाह होती वैसा किया जाता। इस व्यवस्थित दशा में इस कोई शांतिप्रद उत्तर न सोच सके। बलराज ने फिर कहा, कुछ मुंह से बोलती क्यों नहीं, बस रह जाती, क्या हुआ कुछ बता भी तो। बिलासी से सकते हुए, फैजो और गौस खां हमारी सब गायें भैंसे कहानी हौद आँख ले गए। बल्लाज, क्यों, क्या उनकी सीर में पड़ी थी? बिलासी, नहीं, कहते थे कि चरावर के चराने की मनाही हो गई। बल्लाज ने देखा कि माता की आंखें झुकी हुई हैं और मुख पर मर्माघात की आभा झलक रही है। उसने उग्र अवस्था में स्थिति को उससे कहीं भयंकर समझ लिया जितनी वह वस्तुतः थी। कुछ और पूछने की हिम्मत न पड़ी, आंखें रक्तवर्ण हो गई, कंधे पर लठ रख लिया और मनोहर से बोला, मैं जरा गांव तक जाता हूँ। मनोहर, क्या काम है? बल्लाज, फैजी और गौस खां से दो दो बातें करनी है। मनोहर, ऐसी बातें करने का मौका नहीं, अभी जाओगे तो बात बढ़ेगी और कुछ हाथ भी न लगेगा, चार आदमी तुम्हें को बुरा कहेंगे, अपमान को बदला इस तरह नहीं लिया जाता। मनोहर के इन शब्दों में इतना भयंकर संकल्प, इतना घातक निश्चय भरा हुआ था कि बल्लाज अधिक आग्रह न कर सका। उसने लाठी रख दी और माँ से कहा, अभी घर जाओ, हम लोग आएंगे तो देखा जाएगा। मनोहर, नहीं घर मत जाओ, यहीं बैठो, साथ को सब जने साथ चलेंगे। वह कौन आ रहा है, बिंदा महाराज है क्या? बल्लाज, नहीं, कादिर दादा जान पड़ते हैं। हाँ वही है, भागे चले आते हैं, मालूम होता है गांव में मारपीट हो गई। दादा, क्या है, कैसे दौड़े चले आते हो, कुशल तो है? कादिर ने दम लेकर कहा, तुम्हारे पास दौड़े आते हैं। बिलासी रोती आई है, मैं डरा तुम लोग गुस्से में ना जाने क्या कर बैठो, चला की राह में मिल जाओगे तो रोक लूंगा, पर तुम कहीं मिले ही नहीं। अब तो जो हो गया सो हो गया, आगे की खबर करो। आज जमींदार ने चलावर रोक दिया। यह अंधेर देखते हो मनोहर? हाँ देख तो रहा हूँ, अंधेर ही अंधेर है कादिर, फिर अदालत जाना पड़ेगा। मनोहर चलो मैं तैयार। कादिर हाँ आज जाओ तो सलाह पक्की करके सवाल दे दें, आपकी हाई कोर्ट तक लड़ेंगे, चाहे घर बिक जाए बस हल पीछे चंदा लगा दिया जाए। मनोहर हाँ यही अच्छा होगा। कादिर मैं नमाज पढ़ता हूँ, सुना बिलासी को चरावर में चपरासियों ने बुरा भला कहा और रोते हुए इधर आई है, समझ गया कि आज गजब हो गया। बारे तुमने सबर से काम लिया, अल्लाह इसका सबका तुमको देगा। तो मैं अब जाता हूँ, मुझसे चंदे की बातचीत करता हूँ, जरा दिन रहते चले आना। कादिर खां सावधान होकर चले गए, वरना समझे कि यहाँ मन में कुछ और ही ठन गई है। मनोहर के तुले हुए शब्दों को उन्होंने मानसिक धैर्य का द्योतक समझा। मनोहर ऐसे उद्दीप्त उत्साह से अपने काम में दत्तचित्त था, मानो उसकी युवावस्था का विकास हो गया है। धान के पोलों के ढेर रखते जाते थे, न आगे ताकता था न पीछे, न किसी से कुछ बोलता था न किसी से कुछ सुनता था, न हाथ थकते थे न कमर दुखती थी। बल्ला ने चीलम भर कर रख दी, तम्बाकू रखे रखे जल गया। बिलासी खाण का रस घोल कर सामने लाई, उसने उसकी ओर देखा तक नहीं, कुत्ता पी गया। कुंवार की धूप थी, देह से चिंगारियां निकलती थी, पसीने की धारें बहती थी, किंतु वह सिर तक न उठाता था। बल्लाज कभी खेत में आता, कभी पेड़ के नीचे जा बैठता, कभी चीलम पीता, एक ही अग्नि दोनों के हृदय में प्रज्वलित थी, एक ओर सुलगती हुई दूसरी ओर दहकती हुई। युग और वायु के वेग से चंचल, दूसरी ओर से निर्बलता से निश्चल, एक ही भावना दोनों के हृदय में थी, एक में उद्दाम उच्छृंखल, दूसरे में गंभीर और स्थिर। दोपहर हुए, विलासी ने आकर डरते डरते कहा, चलो चबीना कर लो। मनोहर ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, चलो आते हैं। एक घंटे के बाद विलासी फिर आकर बोली, चलो चबीना कर लो, दिन ढल गया, क्या आज ही सब खेत काट लोगे? मनोहर ने कठोर स्वर से कहा, हाँ यही विचार है, कौन जाने कल आए या ना आए। जैसे किसी भरे हुए घड़े में कंकर लग गया और पानी बह निकले, उसी भांति विलासी के हृदय में एक चोट सी लगी और आंसू बहने लगे। वरह रह कर हाथ मलती थी, हाय न जाने इन्होंने मन में क्या ठान लिया है। वह कई मिनट तक वहीं खड़ी रही, परिणाम को भयावह विकराल मूर्ति उसके नेत्रों के सामने नाच रही थी, मुंह खोले उसे निगलने को दौड़ती थी, और शोक इस मूर्ति को अपने ही हाथों से रचा था। अंत में वह मनोहर के सम्मुख बैठ गई और उसकी ओर अत्यंत दीन भाव से देख कर बोली, हाथ जोड़ कर कहती हूँ, चलकर चबीना कर लो, तुम्हारे इस गुमसुम रहने से मेरा कलेजा दहल रहा है, तुमने क्या ठान लिया, बोलते क्यों नहीं? मनोहर जाकर चुपके से बैठो, जब मुझे भूख लगेगी खा लूंगा। विलासी हाय राम, तुम क्या करने पर तुले हुए? मनोहर करूंगा क्या, कुछ करने की लायक होता तो आज यह बेइज्जती नहीं होती, जो कुछ तकदीर में है वह होगा। यह कहकर वह फिर अपने काम में व्यस्त हो गया, कोई किसी से न बोला। बल्लाज टालमोल मटोल करता रहा और विलासी उदास बैठी, कभी रोती कभी अपने को कोसती, यहाँ तक कि संध्या हो गई। तीनों ने धान के कट्ठे गाड़ी पर लादे और लखनपुर चले। बल्लाज गाड़ी हाँकता था, मनोहर पीछे पीछे ऊंचे सर से एक बिरहा गाता हुआ चला आता था। राम कल्लू अहिर मिला, बोला, मनोहर काका आज बड़े मगन हो। मनोहर का गाना समाप्त हुआ तो उसने भी एक बिरहा गाया। दोनों साथ साथ गांव में पहुंचे तो एक हलचल से मची हुई थी, चारों ओर चरावर की चर्चा थी। कादिर के द्वार पर एक पंचायत से बैठी हुई थी, लेकिन मनोहर पंचायत में न जाकर सीधा घर गया और जाते ही जाते भोजन मांगा। बहू ने रसोई तैयार कर रखी थी, इच्छापूर्ण भोजन करके नारियल पीने लगा। थोड़ी देर में बल्लाज भी पंचायत से लौटा। मनोहर ने पूछा, ओहो क्या हुआ? बल्लाज कुछ नहीं, यह सलाह हुई कि खां साहब को कुछ नज़र वजर देकर मना लिया जाए, अदालत से सब लोग घबराते हैं। मनोहर यह तो मैं पहले ही समझ गया था, अच्छा जाकर चटपट खा पी लो, आज मैं भी तुम्हारे साथ रखवाली करने चलूँगा, आँख लग जाए तो जगा लेना। एक घंटे बाद दोनों खेत की ओर चलने को तैयार हुए। मनोहर ने पूछा, कुल्हाड़ा खूब चलता है ना? बल्लाज हाँ आज ही तो रगड़ा है। मनोहर तो उसे ले लो। बल्लाज मेरा तो कलेजा थर थर काँप रहा है। मनोहर काँपने दो, तुम्हारे हाथ में साथ मैं भी तो रहूँगा, तुम दो एक हाथ चला के वहाँ से लंबे हो जाना और सब मैं देख लूँगा, इस तरह आके सो रहना जैसे कुछ जानते ही नहीं, कोई कितना ही पूछे डरावे धमकावे मुँह मत खोलना, मैं अकेले ही जाता, एक मुदा एक तो मुझे अच्छी तरह सूझता नहीं, कई दिनों से रतौंधी होती, दूसरे हाथों में अब वह बल ही नहीं कि एक चोट में वारा न्यारा हो जाए। मनोहर यह बातें ऐसी सावधानी से कर रहा था मानो कोई साधारण घरेलू बातचीत। बल्लाज इसके प्रतिकूल शंका और भय से आतुर हो रहा था, क्रोध के आवेश में वह आग में कूद सकता था, किंतु इस पैशाचिक हत्याकांड से उसके प्राण सूखे जाते थे। खेत में पहुंचकर दोनों मचान पर लेटे, अमावस की रात थी, आकाश पर कुछ बादल भी हो गए थे, चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ था। मनोहर तो लेटते ही खराटे लेने लगा, लेकिन बल्लाज बड़ा बड़ा करवटें बदलता रहा, उसका हृदय नाना प्रकार की शंकाओं का अविरल स्रोत बना हुआ था। दो घड़ी बीतने पर मनोहर जागा, बोला, बल्लाज सो गई क्या? बल्लाज नहीं, नींद नहीं आती। मनोहर अच्छा तो अब राम का नाम लेकर तैयार हो जाओ, डरने या घबराने कोई बात नहीं, अपने मर्जात की रक्षा करना मर्दों का काम है, ऐसे अत्याचारों का हम और क्या जवाब दे सकते हैं, बेइज्जत होकर जीने से मर जाना अच्छा है। दिल को खूब संभालो, अपना काम करके सीधे यहाँ से चले जाना। आंधेरी रात है, किसी की नज़र भी न पड़ सकती। थानेदार तुम्हें डराएंगे, लेकिन खबरदार डरना मत। और उस गाँव के लोगों से मेल रखोगे, कोई तुम्हारा बाल भी बांका न कर सकेगा। दुकरण भगत अच्छा आदमी नहीं है, उसे चौकन्ने रहना। हाँ, कादिर भरोसे का आदमी है, उसकी बातों का बुरा मत मानना। मैं तो फिर लौट के घर ना आऊँगा। तुम्हारे घर के मालिक बनोगे? अब वह लड़कपन छोड़ देना, कोई चार बात कहे तो गम खाना। ऐसा कोई काम न करना कि बाप दादे के नाम को कलंक लगे। अपनी घरवाली को सिर मत चढ़ाना, उसे समझाते रहना कि सास के कहने में रहे। मैं तो देखन ना आऊँगा, लेकिन इस तरह घर से रार मचता रहा तो वो घर मिट्टी मिल जाएगा। बल्लाज ने अवरुद्ध कंठ से कहा, दारा मेरी इतनी बात मानो, इस वक्त सब्र कर जाओ। मैं कल एक की खोपड़ी तोड़ कर रख दूंगा। मनोहर, हाँ तुम्हें कोई मारे तो तुम संसार भर को मार गिराओ। है जो करतार क्या मिट्टी के लोदे हैं, गौस खां के पलटन में रह चुका हूँ। तुम लकड़ी में उनसे पेश ना पा सकोगे। वह देखो, हिरन निकला आया, महावीर जी का नाम लेकर उठ खड़े हुए। ऐसे कामों में आगा पीछा अच्छा नहीं होता, गांव के बाहर ही बाहर चलना होगा, नहीं तो कुत्ते भूखेंगे और लोग जाग उठेंगे। बल्लाज, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। मनोहर, कोई परवाह नहीं, कुल्हाड़ी हाथ में लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा कलेजा मजबूत है। तुम्हें अभी तो डर लग रहा है, वह ताप के पहले का जाड़ा है। तुमने कुल्हाड़ा कंधे पर रखा, महावीर का नाम लेकर उधर चले तो तुम्हारी आंखों से जिनकारियाँ निकलने लगी। सिर पर खून सवार हो गया, बाज की तरह शिकार पर झपटोगे। फिर तो मैं तुम्हें मना भी करूँगा तो तुम न सुनोगे। वह देखो, सियार बोलने लगे, आधी रात हो गई, मेरा हाथ पकड़ लो और आगे आगे चलो। जय महावीर की।